सबके सब कुछ हैं तो भगवान के पिता भले कौन हो सकते हैं, उनके माता भले कौन हो सकते हैं। तो भगवान ऐसे कोई विशेष पुण्यवान शुद्ध भक्तों को चुनते हैं और वो ऐसी लीला रचाते हैं कि ऐसे भक्तों के पुत्र के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। और फिर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर, और वो कहने लगे तो कृपया इस रावण की शीघ्रातिशीघ्र हत्या कर दीजिए, कि ये तो न केवल हमें कष्ट दे रहा है लेकिन सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों के लिए वो कांटे के समान बन गया है, और जितने जल्दी आप यहाँ आएं उतना अच्छा होगा, और इसका वध करके फिर आप अपने वैकुंठ धाम में अवश्य लौट जाइएगा। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि कृपया कोई उपाय बताइए, मैं प्रकट तो हो जाऊंगा लेकिन उपाय क्या है इस रावण का वध करने के लिए। तो देवताओं ने फिर विस्तार ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो स्वयं देवताओं के मुख से सुनना चाहते थे। तो देवताओं ने कहा कि केवल मनुष्य ही रावण का वध कर सकते हैं, देवलोक के निवासी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तो आप फिर रावण का वध आसानी से कर पाएंगे। इस प्रकार से जब देवताओं ने ऐसे कहा, विष्णु ने तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। अब यज्ञ की समाप्ति होने जा रही थी और फिर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भी वहां से ओझल हो गए। जितने भी ऊपरी लोक के ऋषिगण भी आए थे वो भी अपने अपने निवास स्थानों में, अपने अपने लोकों में, धामों में वापस चले गए। और उसके बाद उस यज्ञ स्थली में क्या हुआ वो हम थोड़ी देर में सुनते हैं। अब थोड़ी देर के लिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब बोलिएगा जोर से बोलिए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो जब यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण सब अपने अपने लोकों में लौट के चले गए, तो वहां दशरथ महाराज ब्राह्मणों के संग में उपस्थित थे। ठीक उसी समय अग्नि के भीतर से एक विशाल दिव्य व्यक्ति उत्पन्न हुए, जो बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत बलवान थे, लाल वस्त्र धारण किए हुए थे, दिखने में थोड़े सांवले थे, उनकी आवाज बादलों के गरजने के समान थी, उनके सारे शरीर पर बहुत मुलायम बाल थे जैसे एक सिंह का होता है, तरह तरह के शुभ लक्षण उनके शरीर पर दिखाई पड़ रहे थे, उनका दिव्य शरीर दिव्य रत्नों से सुशोभित था और अग्नि के समान या सूर्य के समान वो चमक रहे थे, और उनके दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा कुंभ था जो कि सोने का बना हुआ था, और इस सोने के कुंभ के ऊपर एक चांदी का ढक्कन था। इस सोने के पात्र के भीतर दिव्य पायस था, दिव्य खीर थी, और उस दिव्य व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि महाराज दशरथ, आप जान लो कि मैं भगवान श्री विष्णु का दूत हूं। जब महाराज दशरथ ने यह सुना तो उनका यथा उचित विधिवत रूप से सत्कार किया और फिर उनसे कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उस दिव्य विष्णु दूत ने कहा, वैसे ही राजन, आपने अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्ट यज्ञ संपन्न कर लिए हैं और इनका फल स्वीकार करने का समय आपके लिए आ गया है, और ये ऐसे यज्ञ संपन्न करने से न केवल आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी परंतु ऐश्वर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी। तो ये लीजिए, इस कुंभ में खीर है जो कि स्वयं देवलोक में बनी हुई है, अपने रानियों को चुनिए, उन रानियों को आप ये पायस दे दीजिए, और सही समय पे आपके पुत्र होंगे। बड़े आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक आभारी रूप से दशरथ महाराज ने उस सोने के पात्र को जिसमें दिव्य खीर थी उसे स्वीकार कर लिया। बड़े प्रसन्न चित्त से जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को अचानक बहुत धन मिल जाता है तो वो कैसे प्रसन्न हो जाता है, तो महाराज दशरथ जिनकी अनेक वर्षों से कामना थी कि मेरे पुत्र हो जाएं, और अब जब उनको ये पायस का कुंभ मिला तो उनके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। ऐसे प्रसन्न चित्त से उस पात्र को लेकर वो अपने राजमहल में चले गए। वहाँ पे सीधे अपने रानियों के पास चले गए। ऐसे बताया जाता है कि महाराज दशरथ की 360 रानियाँ थीं, परंतु इनमें से तीन प्रमुख थीं। सबसे वरिष्ठ रानी थीं कौसल्या देवी, उनके बाद में थीं सुमित्रा देवी, और उनके बाद में कैकेयी देवी। वैसे महाराज दशरथ को कैकेयी देवी अधिक प्रिय थीं, फिर भी वो धर्म के अनुसार जीवन बिताते थे, इसलिए बड़े सोच विचार करके उन्होंने पायस या खीर का वितरण करना आरंभ किया। जितनी भी खीर उस दिव्य पात्र में थी, सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने इसके दो भाग कर दिए, और एक भाग अर्थात उस खीर का आधा हिस्सा कौसल्या देवी को प्रदान कर दिया। बचा हुआ जो भाग था अर्थात उस खीर का आधा भाग, उस बचे हुए भाग का आधा कर दिया और सुमित्रा देवी को दे दिया, और जो बच गया था उसके भी दो भाग कर दिए। एक भाग कैकेयी देवी को दे दिया, और फिर जो अंत में बचा हुआ था वो विचार कर रहे थे कि ये किसे दिया जाए। फिर सोच विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुमित्रा देवी को देना चाहिए, ये तीन समस्त रानियों में से सबसे बड़ी बुद्धिमान हैं। तो फिर सुमित्रा देवी को ये हिस्सा उन्होंने अंतिम हिस्सा भी दे दिया, चौथा हिस्सा। तो इन तीनों रानियों ने अपने अपने हिस्सों को स्वीकार किया, बहुत प्रसन्न हुई, प्रसन्न चित्त से ये खीर उन्होंने खीर का पान कर लिया, और शीघ्र ही थोड़े समय बाद उनको अनुभव हुआ कि हमारे गर्भ में कोई संतान है, और ये कोई साधारण संतान तो नहीं है, स्वयं भगवान उनके गर्भ में प्रकट हुए हैं। वैसे वाल्मीकि रामायण के अलावा और थोड़े रामायण भी हैं, इनमें से कई रामायणों में ये बताया गया है कि महाराज दशरथ ने उस खीर के तीन समान भाग किए और तीन रानियों को दे दिया, और अन्य जगह कहा गया है कि तीन भाग करने के बाद कैकेयी देवी और सुमित्रा देवी ने अपने भाग को और आधा करके वापस दे दिया। परंतु वास्तव में वाल्मीकि मुनि यह रामायण में वर्णन करते हैं, उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रमाण में ये बांटा गया वो इस प्रकार से है कि पहला आधा भाग माता कौसल्या को, बचे हुए आधे भाग का आधा अर्थात एक चौथाई भाग सुमित्रा देवी को, और एक चौथाई भाग से और आधा भाग एक आठवां भाग माता कैकेयी को, और फिर बचा हुआ भाग सुमित्रा देवी को। इस प्रकार से बड़े बुद्धिमानी से उन्होंने ऐसे दिया, पायस का वितरण कर लिया। और थोड़े वैष्णव आचार्यों ने अपनी भावपूर्ण टीका इस घटना के ऊपर की है, विशेष करके जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने ऐसी टीका की है कि इस प्रकार से वितरण जब हुआ खीर का, जैसे ही माता कौशल्या को खीर मिली तुरंत उन्होंने उस खीर का पान कर लिया, क्योंकि वह पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत आतुर थीं। सुमित्रा देवी को जब उनका हिस्सा मिला, उन्होंने हिस्से को ऐसे ही रखा, तुरंत पान नहीं किया। कैकेयी देवी को जब मिला तो कैकेयी देवी ने भी तुरंत खीर का पान कर लिया। सुमित्रा देवी बहुत बुद्धिमान थी, वो सोच रही थी मर्यादा के आधार पर सबके लेने के बाद ही मुझे लेना चाहिए। तो माता कौशल्या ने सर्वप्रथम खीर का पान किया है तो राम उनके गर्भ से प्रकट होंगे स्वयं भगवान, और कैकेयी देवी ने भी इस ओर खीर का पान किया है तो उनके गर्भ से जन्म लेंगे भरत, जो उन भगवान श्री राम की सेवा करेंगे। तो अब मैं मेरे दो हिस्से ले लूंगी, जिनसे मेरे दो पुत्र उत्पन्न होंगे उन दो पुत्रों की सेवा करने के लिए। एक है लक्ष्मण, जो कि भगवत सेवा करेंगे अर्थात श्री राम की सेवा में रत रहेंगे, और दूसरे हैं शत्रुघ्न, जो भागवत सेवा करेंगे अर्थात भरत की सेवा करेंगे। देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवत सेवा और भागवत सेवा। भगवत सेवा अर्थात प्रत्यक्ष भगवान की सेवा। भागवत कौन होते हैं? भागवत होते हैं भगवान के सेवक। तो भगवत सेवा अर्थात प्रत्यक्ष भगवान की सेवा, और भागवत सेवा अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा। तो भरत तो श्री राम के सेवक हैं। दो दिन पहले हम यहां सुंदर नाट्य लीला देख चुके हैं कि भरत महाराज की भक्ति कितनी थी श्री राम के प्रति। तो सुमित्रा देवी चाहती थी कि मेरा एक पुत्र भरत भगवत सेवा करे, श्री राम की सेवा करे, और बचपन से ही लक्ष्मण श्री राम से जुड़ गए, श्री राम के बिना नहीं रह सकते थे, हमेशा श्री राम के संग में रहकर उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते। दूसरी ओर शत्रुघ्न, वो भागवत सेवी बने, भरत के साथ में सदैव रहते थे। जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी हुई, उसी प्रकार से भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी हुई। ऐसे सुमित्रा देवी ने सोचा था, ऐसे वैष्णव आचार्यों की टीका है। तो खैर, उधर चारों भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने अपने माताओं के गर्भ में स्थित थे, प्रकट होने की तैयारी में थे। अब थोड़ा समय और था, पूरा एक साल और बीतना था। पायस का पान करने के पश्चात पूर्ण 6 ऋतु बीतने थीं, एक ऋतु 2 महीने की होती है। तो इस दौरान ब्रह्मा जी ने ठीक समझा कि वो और भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए देवलोक में कुछ तैयारी करे। तो उन्होंने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र ही भगवान विष्णु अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं, तो आप भी वहां प्रकट हो जाइए, अंश रूप में पुत्रों को आप प्रकट कराइए, जो कि आगे चल के भगवान श्री राम की सहायता करेंगे, श्री राम के साथ देंगे इस युद्ध में, जिसमें वो आगे चल के रावण का वध कर लेंगे। भगवान विष्णु हमारे हितैषी हैं, वो अपने वचन का पालन करेंगे, शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं, अप्सराओं के गर्भ के माध्यम से। और जितने भी महिलाएं हैं, जो श्रेष्ठ महिलाएं हैं, फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि ऐसे संतान की उत्पत्ति करिए जो श्रेष्ठ महिलाएं हैं गंधर्व लोक में, विद्याधर लोक में, चारण लोक में, सिद्ध लोक में, यहाँ तक कि जो श्रेष्ठ वानर समाज में और ऋक्ष समाज में महिलाएं हैं उनके गर्भ में आप ऐसे श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति कीजिए जो कि शक्ति में, बुद्धि में, योग्यता में आपके समान होंगे, जो माया विद्या में निपुण होंगे, जो बहुत शूरवीर रहेंगे, साहसी रहेंगे, जो पवन की गति पर चल पाएंगे, उड़ पाएंगे, जो बहुत बुद्धिमान होंगे और जिनकी हत्या शत्रु नहीं कर पाएंगे और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण होंगे और केवल आपके समान ही वो शक्तिशाली और तेजस्वी रहेंगे। वैसे मैंने जांबवान जो वृक्षों के राजा हैं, भालों के राजा हैं, उनको तो जन्म दे ही दिया है, वो तो प्रकट हो ही गए हैं। इस प्रकार से इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने अपने अपने पुत्रों की उत्पत्ति करना आरंभ कर दिया। इंद्रदेव से उत्पन्न हुए वाली, सूर्यदेव से उत्पन्न हुए सुग्रीव, बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनसे उत्पन्न हुए तार, कुबेर से उत्पन्न हुए गंधमादन, वरुण देव से उत्पन्न हुए सुषेण नाम के शक्तिशाली वानर, विश्वकर्म से उत्पन्न हुए नल, विश्वकर्म देवलोक के अभियंता हैं, इंजीनियर हैं, और नल भी उस पुल को बांधने के लिए, उस सेतु के निर्माण कार्य में प्रमुख व्यक्ति रहे। आगे अग्निदेव ने नील नाम के विशाल वानर की उत्पत्ति की। अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविध नामक वानरों की उत्पत्ति की। आगे वायुदेव ने हनुमान की उत्पत्ति की जो कि वायुदेव के समान ही शक्तिशाली थे, जिनका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर था, जो गरुड़ से भी गरुड़ के समान गति पर उड़ सकते थे आसमान में, और समस्त वानर सेना में वानर के जो मुख्य सेनापति थे उनमें से सबसे बुद्धिमान और सबसे बलशाली थे। और उधर पर्जन्य से शरभ, ये वानर भी उत्पन्न हुए। जब हम वानर सेना की बात सुनते हैं, हम हमारे अनुभव में जो हमने बंदर देखे हैं उनके बारे में सोचते हैं। आप में से जो वृंदावन गए हैं आपने अवश्य वहाँ के बंदर देखे होंगे, छोटे छोटे बंदर होते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हनुमान और ये अन्य वानर जो थे वो इस प्रकार के वानर थे। नहीं, जैसे हम अभी सुन चुके हैं हनुमान जी के बारे में, उनके शरीर तो वज्र के समान कठोर थे, विशाल थे वो, लाखों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उनकी उत्पत्ति हुई। उनका शरीर जो है वो पहाड़ और हाथियों के समान बड़ा और मजबूत था, और बड़े शूरवीर थे, तेजस्वी थे, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। और ऋक्ष समाज अर्थात भालुओं के समाज में, वानर समाज में, और ऐसे वानर जिनकी पूंछ बहुत लंबी है, ऐसे समाज में भी ये प्रकट हुए। और उनके पिता जो देवलोक के निवासी थे, बिल्कुल उनकी तरह उनके शरीर की कांति थी, शारीरिक बल था, बुद्धि थी और योग्यता थी। और वो वन चारण थे, वन में भ्रमण करते रहते थे, कभी पहाड़ों में, कभी वनों में, और वन के अंदर जो भी कंदमूल फल आदि मिलते थे उन्हीं पर अपना जीवन यापन करते थे। अपने इच्छा के अनुसार वो अपना रूप बदल सकते थे, काम रूपिणः, और जहाँ चाहे वहाँ वो जा सकते थे, जैसे शेर और सिंह जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं। हरिण आदि जो होते हैं डर डर के जाते हैं, लेकिन सिंह और शेर जो होते हैं निडर होकर कहीं भी चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये वानर चलते फिरते थे, सारे पृथ्वी में फैल गए। ऐसे वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि पृथ्वी भर में ये करोड़ों की संख्या में ये वानर सेना फैल गई। इतने शक्तिशाली थे कि पहाड़ों को उखाड़ के फेंक सकते थे, तो वृक्षों की बात तो दूर है, वृक्षों को भी आसानी से उखाड़ के फेंक देते थे, ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को भी। साथ साथ में जब वो समुद्रों में जाते थे तो समुद्र को पूरी तरह से विचलित कर सकते थे, समुद्र को पार करके छलांग मारने की भी उनकी क्षमता थी। जब वो चलते थे, नृत्य करते थे, तो पृथ्वी कांपने लगती थी। वो आसमान में इतने ऊपर तक कूद सकते थे कि बादलों को भी वो पकड़ सकते थे। यदि उनके रास्ते में कोई बड़े बड़े शेर, बड़े हाथी भी आ जाते तो उनको भी आसानी से पकड़ के फेंक सकते थे। ये इस तरह के वानर थे। तो जब हम वानर सेना का नाम सुनते हैं तो साधारण वानरों की बात हमें मन में नहीं लेनी चाहिए, ये तो पहाड़ के समान बड़े विशाल वानर थे और देवलोक के समान, देव देवताओं के समान शक्तिशाली थे। तो थोड़े वानर इनमें से वाली और सुग्रीव जो जो दो भाई थे इनके इर्द गिर्द आए, थोड़े हनुमान के पास आए, थोड़े नल के पास, थोड़े नील के पास, थोड़े गंधमादन के पास। ऐसे जितने भी ये वानर सेना के प्रमुख वानर थे उनके पास लाखों की संख्या में अन्य वानर भी आने लगे। ये सारे वानर प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय का जबकि वो श्री राम की सहायता कर पाए रावण की हत्या करने के लिए। तो उधर एक साल बीत गया और सारे देवतागण भी अपने अपने लोकों में चले गए थे। दशरथ महाराज ने जितने भी राजा आए थे वहाँ उस पुत्र कामिष्ट यज्ञ में, उनको भी प्रस्थान करते समय आदर पूर्वक भेंट वगैरह देकर भेज दिया और दशरथ महाराज राह देख रहे थे कब ये एक साल समाप्त हो जाएगा और कब मेरे पुत्रों का जन्म हो जाएगा। और ठीक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी की तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र के अधीन, जबकि रवि, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र प्रधान थे, और जब बुध सूर्य के साथ मेष राशि में थे और चंद्र कर्क राशि में, ऐसे समय भगवान श्री राम का प्राकट्य माता कौशल्या के गर्भ से हुआ अयोध्या में। ऐसे पत्रिका से ये समझा जा सकता था कि ये व्यक्ति सारे विश्व का स्वामी बन जाएगा और समस्त सद्गुणों से संपन्न होगा। थोड़ी देर बाद भरत का जन्म हुआ माता कैकेयी के गर्भ से, जबकि पुष्य नक्षत्र था और सूर्य मीन राशि में थी। उसी दिन पर चारों भाइयों का जन्म उसी दिवस पर हुआ था, और साथ साथ में फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जुड़वे भाई थे, सुमित्रा देवी के गर्भ से प्रकट हुए आश्लेषा नक्षत्र, और उस समय सूर्य कर्क राशि में थी। तो ये चार पुत्र अलग अलग प्रकट हुए, परंतु ये भगवान के ही स्वरूप थे। भगवान का प्राकट्य हमारे जन्म के तरह नहीं होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि हे अर्जुन, ये जान लो कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इनको साधारण नहीं समझना चाहिए। जो तत्वतः इन चीज़ों को जान लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, लेकिन हम स्वेच्छा से प्रकट नहीं होते हैं। हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हम जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम ये चयन नहीं कर सकते कि अगले जन्म में हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, बौद्धिक अवस्था कैसी होगी, हमारे अंदर कैसे गुण होंगे, क्या लक्षण होंगे, ये हम चयन नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब हम कर्म कर देते हैं तो कर्मों के फल तो मिलकर ही रहेंगे, चाहे हम उनको पसंद करें या न करें। तो हम बद्ध होकर जन्म लेते हैं, हमारी अवस्था बद्ध अवस्था है, परंतु भगवान की अवस्था सदैव मुक्त रहती है। भगवान कभी भी किसी के बंधन में नहीं आ सकते, इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं, भगवद गीता में वो बताते ही हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। परंतु वैष्णव आचार्यों ने श्री राम के प्राकट्य के बारे में एक और भावार्थ दिया है, भावपूर्ण टीका की है। वो बताते हैं कि भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ में रहते हैं, दोनों साथ में हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो साथ में श्रीमती राधा रानी जी हैं, जब नारायण की बात करते हैं तो श्रीमती लक्ष्मी देवी उनके साथ में हैं, उसी प्रकार से जब हम श्री राम की बात करते हैं तो हम ये कहने जा रहे थे कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं और सदैव अपने अंतरंगा शक्ति के साथ ही रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं भगवान। जैसे राजा कभी अकेले नहीं रहते, एक राजा है लेकिन रानी नहीं है, महारानी नहीं है, तो फिर किस तरह के राजा हैं? राजा हैं, प्रजा नहीं है, तो किस तरह के राजा हैं? तो भगवान हैं और भक्त नहीं हैं, तो किस तरह के भगवान? तो भगवान हैं, उनके साथ में उनकी अंतरंगा शक्ति भी हैं, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और सीता राम। तो ऐसे एक भावार्थ टीका है, एक आचार्य ने की है। वो कहते हैं कि वैकुंठ में इतने भक्त हैं जो सदैव भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, कि लक्ष्मी और नारायण को, सीता राम को वहाँ बैठ के आराम से बात करने के लिए भी अवसर नहीं मिलता है। और इसलिए सीता देवी सोच रही हैं भगवान के धाम में, वहाँ भी तो वैकुंठ जगत में भगवान निवास करते हैं और समय समय पर वो यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं। सो सीता देवी कह रही हैं कि प्रभु, यहाँ इतने सारे भक्त हैं जो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो बातचीत नहीं हो पाएगी यहाँ वैकुंठ जगत में, शायद ये पृथ्वी लोक में संभव हो पाएगा। पृथ्वी लोक में हम प्रकट हो जाएंगे, अवतार लेंगे। अब अयोध्या में वैसे भी प्रकट होने का समय आ गया है, तो वहाँ हम जाएंगे तो आराम से बैठ के बात तो कर सकते हैं। तो श्री राम ने कहा ठीक है, हम दोनों प्रकट हो जाते हैं अयोध्या में त्रेता युग के समय। अब दोनों जब आए, अब देखिए दशरथ महाराज की 360 रानियां थीं, अब एक सांस घर में रहती हैं तो पति पत्नी का बात करना मुश्किल हो जाता है ज़्यादा। अब 360 सांस रहीं तो देखिए, तो फिर सीता देवी राम से कहने लगी, अब यहाँ भी कोई बात करने के लिए समय नहीं है, शायद एक ही उपाय है कि हमें वन में जाना होगा, वन में ही एकांत स्थान में बैठ के थोड़े बहुत हम बातचीत कर पाएंगे। तो श्री राम ने कहा ठीक है, वही सही। तो ये वनवास की लीला हुई। वैसे सीता राम तो सदैव साथ में रहते हैं, और भक्तों का उद्देश्य है, भक्तों का आनंद है कि वो सीता राम को सदैव साथ में देखना चाहते हैं, राधा कृष्ण को साथ में देखना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण को साथ में देखना चाहते हैं। बस हमारा आनंद इसी में है, हम इस युगल जोड़ी को हम बस इनकी सेवा हम करें, युगल किशोर की, और ऐसे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे श्री रामचंद्र इक्ष्वाकु परंपरा में क्यों प्रकट हुए, इसके पीछे भी एक भावार्थ है। वैसे आप सबने भगवान रंगनाथ का नाम तो अवश्य सुना होगा। भगवान रंगनाथ कहाँ पर विराजमान हैं? श्रीरंगम में, जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु प्रांत में, तिरुचिरापल्ली गांव के पास में ही है ये श्रीरंगम, कावेरी नदी के तट पे। बहुत भव्य मंदिर है भगवान का, वहाँ विष्णु रूप में भगवान शयन कर रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है विश्व भर में, और इस विराट मंदिर के साथ बड़े बड़े द्वार हैं, और ऐसे बताया जाता है कि रंगनाथ देव सबसे पहले क्षीर सागर में थे, तो आखिर भगवान विष्णु हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे लोक ब्रह्म लोक में आइए। तो रंगनाथ जी तैयार हो गए, रंगनाथ जी आए ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा जी ने खूब सेवा की उनकी जी भर के। लेकिन यहाँ पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु का समय आया, उनके पुत्र थे राजा इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु ने सोचा कि मैं भी प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मुनिवर आप ऐसी कृपा करें कि रंगनाथ जी को यहाँ आने दीजिए पृथ्वी लोक पर अयोध्या नगरी में, हम इनकी सेवा करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने अनुमति दे दी, रंगनाथ जी ब्रह्मलोक से यहाँ पृथ्वीलोक पर आए अयोध्या नगरी में। इक्ष्वाकु राजा के समय से करीब करीब 34 या 35 पीढ़ियाँ बीत गईं राजाओं की, और प्रत्येक राजा ने बड़े भक्ति भाव से रंगनाथ जी की सेवा की। दशरथ महाराज ने भी अपने जीवन भर 60,000 वर्ष रंगनाथ देव की सेवा की, परंतु रंगनाथ सोच रहे थे जिस तरह से होना चाहिए सेवा वो ठीक उस तरह से नहीं हो पा रही है, हालांकि मेरे भक्त पूरी प्रयास तो कर रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि केवल मैं ही मेरी सेवा ठीक ठाक कर पाऊंगा, तो मुझे ही आना होगा। तो जब मैं अगली बार प्रकट हो जाऊंगा तो मैं दशरथ महाराज का पुत्र बन के आ जाऊंगा, इसी इक्ष्वाकु राजा के वंश में, और ऐसे मैं सेवा कर पाऊंगा और उनकी सेवा में स्वीकार कर पाऊंगा। तो ऐसे भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए, दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में। उन्होंने भी सेवा की, फिर बाद में उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास में आके अंततः उन्होंने रावण का वध किया, और जब वापस अयोध्या लौटने का समय आया तो विभीषण के पुष्पक विमान में, ये पुष्पक विमान तो अब रावण के पास से विभीषण के पास आया था, तो विभीषण ने पुष्पक विमान दिया सीता राम लक्ष्मण हनुमान और सब जितने भी वानर सेना थे, वो पुष्पक विमान में बैठे और अयोध्या की ओर चल पड़े। तो विभीषण भी आए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में वो उपस्थित थे, और जब वापस जाने का समय आया तो श्री राम सोच रहे थे कि विभीषण को क्या उपहार दिया जाए। विभीषण ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया था, अपने प्राण को खतरे में डाल के वो मेरे शरण लेने के लिए आ गया था, तो विभीषण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं ये रंगनाथ जी की मूर्ति, जिनकी सेवा प्राचीन काल से हमारे संप्रदाय में, हमारे परंपरा में हो रही है, हमारे घराने में, हमारे वंश में हो रही है, मैं रंगनाथ जी को विभीषण के हवाले कर दूंगा ताकि वो उनकी सेवा कर सके। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए और रंगनाथ जी की मूर्ति को लेकर वो आकाश पथ से जा रहे थे लंका की ओर। उस समय दक्षिण भारत में कावेरी के तट पर पहुंचे, बहुत रमणीय वातावरण था और 9 दिन का उत्सव वहां मनाया जा रहा था। उन्होंने सोचा चलो यहाँ उत्सव में शामिल हो जाएं। उन्होंने रंगनाथ जी की मूर्ति को नीचे रख दी, और जब उत्सव समाप्त हुआ तो जब वो मूर्ति को फिर से उठाना चाहते थे तो मूर्ति उठी नहीं। ऐसे बताया जाता है कि उस प्रांत में चोल वंश के राजा धर्मवर्मा राज करते थे, और धर्मवर्मा भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने काफी समय से भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे राज्य में भी प्रकट हो जाइए, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं हमारी प्रजा के साथ में। तो जब उन्होंने देखा कि रंगनाथ जी स्वयं पधारे हैं तो उन्होंने जाके विभीषण से निवेदन किया कि कृपया रंगनाथ देव को यहीं पर रहने दीजिए। विभीषण ने सोचा कि अरे, पहली बात तो ये है कि रंगनाथ देव उठ नहीं रहे हैं अभी, और दूसरी बात राजा भी चाह रहे हैं कि रंगनाथ देव यहीं पर रहें, तो चलो पूछ लेते हैं स्वयं रंगनाथ जी से। तो रंगनाथ भगवान ने कहा कि हाँ, मैं यही रहना चाहता हूँ, और यहाँ चोल राज धर्मवर्मा की सेवा को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। तो रंगनाथ देव इस उत्तर को सुनकर विभीषण ने कहा, तो प्रभु मैं भी मेरे लंका के राज्य को छोड़ता हूँ, मैं भी यहीं आपके साथ रहता हूँ और आपकी सेवा करता हूँ। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें संभालना चाहिए, राज सिंहासन पर बैठ के बड़े धर्म के सिद्धांतों के अनुसार लंका के ऊपर राज करना, तुम चले जाओ, लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरी मूर्ति की स्थापना जब होती है तो मैं पश्चिम दिशा की ओर देख रहा होता हूँ, परंतु आज इस स्थान में मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं दक्षिण में तुम्हारी ओर देखता रहूंगा, ताकि मैं तुम्हें भूल न जाऊं और तुम भी मुझे कभी भूलोगे नहीं, और समय समय पर तुम यहां इस स्थान में आके मेरी सेवा कर सकते हो। तो इस प्रकार से रंगनाथ जी, जो श्री राम के वंश में आराध्य देव थे, मूर्ति थी, वो रंगनाथ श्री रंगम में आ पहुंची। तो ऐसे घनिष्ठ संबंध है रामलीला से भी। तो खैर, ये सब कारण हैं, श्री राम प्रकट हुए इस धरातल के ऊपर मनुष्य समाज में, राजा इक्ष्वाकु के वंश में, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में। और उन्होंने हम सबको दिखाया कि आदर्श व्यक्ति, आदर्श मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श क्षत्रिय, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श सब कुछ कैसे होना चाहिए। श्री राम का उदाहरण हमारे लिए आंखों के सामने है। हमें श्री राम के सुंदर चरित्र के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करते रहना चाहिए, साथ साथ उनके पवित्र नामों का भी उच्चारण करना चाहिए। तो अब कथा के इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि भगवान श्री राम अपने तीन भाइयों के सहित दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में उनके दरबार में, उनके घर में प्रकट हो चुके हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप यहाँ इतने ध्यानपूर्वक कथा सुनने के लिए आए।